नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, दिल से एक प्रार्थना हमेशा निकलती रहती है कि हे ईश्वर, तू कीमती घड़ी सबको देना, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को भी ना देना। क्योंकि मुश्किल घड़ी में व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, उसे कुछ सूझता नहीं है। वैसे तो जब कुछ सूझता नहीं है तब परमात्मा पिता आपकी ही याद आती है, लेकिन फिर भी एक कामना रहती है कि हरेक का जीवन बहुत खुशहाल हो, शांति से परिपूर्ण हो, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। समाधान कार्यक्रम में मित्रों, आप जानते हैं कि लगातार हमारा यही प्रयास रहता है कि सारे संसार में सुख शांति की सरिता प्रवाहित हो। ऐसी प्रार्थना के साथ, इसी शुभकामना के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भ्राता जी, आज हमारे पास पूरे देश के कोने कोने से ही हमारे भाई बहने पधारे हुए हैं, तो आज उनका भी अभिनंदन आपके साथ साथ मैं करना चाहूंगा। आप सभी का, जो देश के कोने कोने से पधारे हुए हैं हमारे भाई बहने, आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। आप एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपने अपने प्रश्न लेकर के यहाँ पधारे हुए हैं, और साथ ही समाधान कार्यक्रम भी आप लगातार देखते होंगे, उससे लाभान्वित हुए होंगे। वैसे तो प्रतिदिन आपके प्रश्नों को मैं भ्राता जी के सामने रखता हूं, लेकिन आज आप लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है कि आप डायरेक्ट ही अपने प्रश्न भ्राता जी से कर सकते हैं। तो भ्राता जी, इससे पहले कि मैं हमारे दर्शक प्रश्न करें, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे?
आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है और हमारी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए कि आप सभी अपने जीवन को सुख शांति प्रेम और सफलता संपन्न आगे बढ़ाएं, और जो जीवन का लक्ष्य है उसको सहज कम परिश्रम से अचीव करें। अब हम आपके क्वेश्चंस को भी वेलकम करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आप उस पर चलकर पूर्णतया समाधान की ओर चलें।
जी, तो मैं चाहूंगा कि हमारी जो सभी भाई बहने हैं, पहला प्रश्न आप में से कौन पूछना चाहेगा आज के समाधान कार्यक्रम का पहला प्रश्न?
नमस्ते, मेरा नाम गायत्री है और मैं नागपुर से आई हूँ। मेरा सवाल ये है कि स्टूडेंट्स में स्टेज फियर बहुत होता है, जिस वजह से वो आने वाली अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें स्टेज फियर तो बहुत होता है, पर बाहर स्टेज से बाहर बोलने की आदत बहुत होती है। तो अगर वो स्टेज फियर को समाप्त करना चाहते हैं तो वो जरा थोड़ा सा अपने बोल पर संयम करें, और बाहर जो उनकी बोल की शक्ति नष्ट हो जाती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। हमारी स्पिरिचुअलिटी में इसके लिए बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। स्वमान हम एक बहुत सुंदर चीज है अध्यात्म में, जिसका अभ्यास करते हैं, जिससे हमारी सोई हुई शक्ति जागृत हो जाती हैं। तो ऐसे केसेज में के प्राय सभी कोई होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कहीं स्पीच तो देते नहीं, तो अधिकतर को फियर रहता है, चाहे वो इंटरव्यू फेस करते हो, एग्जाम के समय भी उनको बहुत फियर होता है। तो वो विशेष रूप से स्वमान का अभ्यास सवेरे ही किया करें, और उसमें से एक स्वमान ये कि मैं महान आत्मा हूँ, दूसरा स्वमान अभ्यास करेंगे मैं विजयी आत्मा हूँ, तीसरा करेंगे मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। ये तीनों स्वमान मिलकर अंदर के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा जागृत करेंगे। कॉन्फिडेंस सभी के अंदर होता है, लेकिन वो जरा सुसुप्त अवस्था में रहता है, सोया रहता है। ये अभ्यास करके थोड़ा डेयर बढ़ाएंगे, बोल्डनेस को बढ़ाएंगे, अपने अंदर ये संकल्प करेंगे कि अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मुझे सफलता मिलेगी ही, यदि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो सफलता मेरी ही होगी। इसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं तो जो उन्होंने याद किया वो भूल जाता है। अगर वो इंटरव्यू दे रहा है तो पहले ही डरा हुआ है तो कुछ का कुछ जवाब देगा, और यदि वो एग्जाम दे रहा है, पेपर सामने आया तो आगे की लाइन पीछे, पीछे की लाइन नीचे दिखाई देने लगेगी, और इससे सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए रोज सवेरे उठकर एक और अच्छा अभ्यास करना होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, निर्भय हूँ, एंड आई विल एंजॉय माई एग्जाम, आई विल एंजॉय माई इंटरव्यू, ऐसा एक सुंदर सा संकल्प अपने अंदर रख लेंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, और ये वाइब्रेशंस बहुत अच्छा काम करेंगे, उन्हें सफलता भी दिलाएंगे।
गायत्री, आपको तो डर नहीं लगता ना?
सर, ये मेरा पर्सनल सवाल था, मुझे भी डर लगता है।
जी जी, चलिए भ्राता जी ने जितने भी टिप्स दिए हैं उनका अच्छा से अभ्यास कीजिएगा, और साथ ही जब स्टेज फियर पूरी तरह से दूर हो जाए तो हमें भी इन्फॉर्म कीजिएगा कि कितने दिन में आपका ये डर दूर हो गया। हमारी शुभकामना है कि आप बहुत धड़ल्ले से भाषण करें और किसी भी प्रकार का फियर आपके पास ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला प्रश्न कौन पूछ रहा है?
मेरा नाम मुकेश है, मैं गुजरात से कोडिनार से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन है यूपीएससी जीपीएससी पीएसआई की एग्जाम की तैयारी कैसे करें और उसका इंटरव्यू कैसे दी जाए, उसमें राजयोग क्या मदद कर सकता है?
सभी राजयोग की तरफ से ही प्रश्न है।
हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्राय सभी स्टूडेंट्स को ये इच्छा रहती है कि जो भी वो कम्पिटिटिव एग्जाम दें उसमें बहुत अच्छे सफल हों, इंटरव्यू भी दें, सहज क्लियर हो जाए। हर विद्यार्थी यही चाहता है, उनके माँ बाप भी यही कामना करते हैं। तो इसमें राजयोग बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि राजयोग से मन शांत हो जाता है, और जब मनुष्य का मन शांत हो जाता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मन और बुद्धि दोनों की एकाग्रता बढ़ने से एक बार ही यदि वो किसी चीज को पढ़ेंगे तो वो लंबे काल के लिए स्मरण हो जाएगी, मेमोरी में बिल्कुल प्रिंट हो जाएगी। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि बार बार पढ़ रहे हैं और भूल रहे हैं, या एग्जाम के समय याद ही नहीं आ रहा है। एकाग्रता इतनी सुंदर हो जाएगी कि एक दो बार पढ़ने से कठिन चीजें भी प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं, और वो संभव नहीं होता कि थोड़ी सी मेहनत से ज्यादा याद हो जाए। मनुष्य भूलता रहता है, ठीक है, उसको दो चार बार तो रिवाइज करना ही चाहिए और अपनी मेमोरी में प्रिंट भी कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप एक चीज आपने पढ़ ली, मान लो इतिहास की कुछ चीजें आपने पढ़ ली, अब जस्ट ये अभ्यास करके कि मैं आत्मा हूं यहाँ, एक एक चीज को रिवाइज करें, जैसे है कि भई सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, बस जरा आत्मा समझ कर एक बार उसको याद करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाएगा। जब भी आप स्टडी प्रारंभ करें उससे पहले एक 3 मिनट राजयोग का अभ्यास कर लेंगे, और ये बहुत सुंदर एक प्रैक्टिस है राजयोग में कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, अर्थात मैं अपनी मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, मैं इस देह की भी मालिक हूँ। और एक बहुत सुंदर विचार अपने को देंगे, जैसे माय माइंड एंड इंटेलेक्ट आर माय गुड फ्रेंड्स, वो मेरे सामने खड़े हैं और उनको आप कह रहे हैं माय माइंड बी साइलेंट, बुद्धि को कहेंगे हे मेरी बुद्धि अब एकाग्र हो जाओ, और जो कुछ भी मैं पढ़ूं तो उसको याद कर लेना और एग्जाम के समय उसको इमर्ज कर देना। रोज दो चार बार ये अभ्यास करेंगे, जब आप स्टडी शुरू करें 1 मिनट ये अभ्यास कर लें, तो आपको महसूस होगा कि आपका मन और आपकी बुद्धि आपकी बात मानने लगे हैं, दे बिकेम योर गुड फ्रेंड, और इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा। और तीसरी बात कि रोज सवेरे उठते ही, जैसे ही उठे, आप 6 बजे उठें 5 बजे उठें, उठते ही 2 बहुत सुंदर संकल्प करेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 7 बार करेंगे। 7 बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, 7 बार करने से सबकॉन्शियस माइंड इसे पूरी तरह से अपने में समा लेगा, रिसीव कर लेगा। तो चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, ये अभ्यास करने से आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी तरह काम करेगी, याद आपको ज्यादा रहेगा और कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। होता क्या है इन एग्जाम्स में कि लंबे चौड़े पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन, तो मनुष्य घबरा जाता है, पहले ये करूं वो करूं। तो जब आप रोज सवेरे ये अभ्यास करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, माइंड स्टेबल रहेगा, और जब आपके सामने वो लंबे चौड़े पेपर्स आएंगे आप बड़े आनंद से उसको एंजॉय करते हुए फटाफट टिक करते चलेंगे और ये आपको सफलता की ओर ले चलेगा।
ठीक है, इंटरव्यू अच्छी रीति से कैसे पास कर जाएगी, वहाँ जाते ही घबरा जाते हैं तो अच्छी रीति से कैसे पास करें?
हाँ, मैंने उत्तर दे दिया कि रोज सवेरे उठकर ये 2 अभ्यास आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और ये जो फियर एक अंदर में होता है वो समाप्त होता जाएगा, आप सफल होंगे।
मुकेश, आप राजयोग का अभ्यास करते हैं?
हाँ, करता हूँ।
जी जी जी, तो ये अभ्यास को जो भ्राता जी ने अभी भी बताए हैं आपको, इन अभ्यासों को अच्छे से अभ्यास में लाइएगा। हमारी बहुत सारी शुभकामना है कि आप अपने हर कम्पिटेटिव एग्जाम में सफल हों, इंटरव्यू में भी सफल हों। भ्राता जी, क्या कोई नियरेस्ट ऐसा अनुभव आया है कि बच्चे बहुत सारे आपसे मिलते हैं, यूथ मिलते रहते हैं, जिन्होंने ऐसे ही जो डर के माहौल में हों, कम्पिटेटिव एग्जाम अपीयर किए हों, बिल्कुल सफल हो गए हों?
अभी एक का बहुत अच्छा अनुभव मेरे पास आया था। अनुभव क्या, वो स्वयं ही आया था और उसने मुझे बताया। अभी मैं ये तो उसे पूछा नहीं तुम कहाँ से हो, क्योंकि बहुत लोग मिलने आते हैं तो मैं प्राय ये पूछता नहीं हूँ। तो उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे इंटरव्यू देने गया, बैज लगा के गया, और मैंने उसको एक चीज बता दी थी कि तुम बिल्कुल डरना नहीं, हाँ या ना दो ही चीज होगी, चाहे तुम सेलेक्ट हो जाओगे चाहे नहीं होगे, तुम मस्ती से जाना बिल्कुल। बैज लगाकर वो मस्ती से गया, जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे थे उन्होंने उसका चेहरा देखा कि लड़का बड़ा चुस्त दुरुस्त लग रहा है, इसके चेहरे पर घबराहट जरा भी नहीं है, और कहा तुम योग अभ्यास करते हो क्या, मेडिटेशन करते हो क्या? उन्होंने कहा यस सर, और कहा फिर पूरी चर्चा राजयोग, ज्ञान क्या है, ब्रह्मा कुमारी क्या है, और कहा जब ज्ञान की चर्चा होने लगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और मुझे फट से वहीं अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो बहुत अच्छा ये हुआ, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपका फेस ज्यादा देखते हैं, क्या आपके एक्सप्रेशन हैं आपके चेहरे पर और किस तरह चुस्ती से आप उत्तर देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। हाँ जी, अगला प्रश्न किस प्रदेश से आ रहा है?
मैं धारा हूँ, मुंबई से। मेरा प्रश्न यह है कि हम जब ये ऑफिस में काम करते हैं तो ऐसे सुबह बहुत सारा काम एक साथ आ जाता है, तो पता रहता है कि काम हो जाएगा, बट काम एकदम से ज्यादा आ जाता है तो वो हैंडल करना वो टाइम पे बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। और फिर हम जैसे राजयोग में सीखते हैं कि बाबा जब याद हो तो सब चीजें आसान हो जाती है, पर इतना सारा काम देख के ना हम घबरा जाते हैं और फिर काम भी ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि वही घबराहट में कि खत्म होगा कि नहीं, शाम तक खत्म होगा कि नहीं, उसमें फिर दोपहर का खाना भी चल मिस हो जाता है, तो वही सारी चीजें माने ठीक से नहीं हो पाती अच्छे से बैलेंस।
अब आप ऐसा करें कि काम आपसे घबराए, अपने को इतना पावरफुल बना दें, हर रोज आप काम करती हैं, कोई एक दिन तो करती नहीं है, ठीक है बहुत सारी फाइलें रखी, बहुत सारा काम है, संकल्प करें आई विल एंजॉय माई वर्क एंड आई विल कम्प्लीट इट बिफोर टाइम, ये बहुत अच्छा संकल्प कर लें और एक दो मिनट मेडिटेशन करें बहुत शांति से। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा काम है, मेडिटेशन में भी 5 मिनट क्यों लगाए जाएं, ऐसा भी सोच लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बहुत साइलेंटली 3 मिनट 5 मिनट अपने मन को शांत करो, अच्छा चिंतन करो, ईश्वरीय शक्तियां रिसीव करो, उससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। और बहुत धैर्यवत होकर, बहुत सरल चित्त होकर, जिसको इजी गोइंग नेचर कहते हैं, उसको साथ लेकर आप कार्य करो वन बाय वन, जल्दीबाजी में नहीं, तो आप पाएंगी कि आपका कार्य पहले ही पूर्ण हो गया है। और जब आपको ये अनुभव होने लगेगा तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर सवेरे ही जो आप स्ट्रेसफुल हो जाती हैं काम देखकर वो भी नहीं होगा, और आप संपूर्ण रूप से अपने कार्य को भी एंजॉय करेंगी, टाइम को भी आराम से मैनेज कर पाएंगी, और इससे जो बहुत सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। देखिए, स्ट्रेस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये मनुष्य को थका देता है, तो आपको थकान भी नहीं होगी, आप जैसी फ्रेश घर से आई थी वैसी फ्रेश वापिस चली जाएंगी।
ठीक है धारा जी,
थैंक यू भाई।
इनका अभ्यास विशेष करके करें, आप फाइल आपसे घबराने लगे ऐसी हमारी कामना रहेगी। जी, विशेष करके मैं धारा जी जानना चाहूंगा कि आप समाधान का कार्यक्रम देखती हैं?
हाँ, मैं देखती हूँ
जी। कुछ विशेष यदि आपको लाभ प्राप्त हुआ हो तो हम जानना चाहेंगे कि क्या सीखा है अब तक समाधान कार्यक्रम देख करके आपने?
मैंने हमेशा जो स्वमान होते हैं, जो हम सुबह उठ के जब बाबा को गुड मॉर्निंग कहते हैं और बताते हैं कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पे है, और जैसे भाई जी ने बोला ना, सुबह जैसे काम चालू होने से पहले अगर ऑफिस के डेस्क पे बैठ के वो अभ्यास करे कि बाबा का वरदानी हाथ सर पे है, तो वो दिन एकदम जल्दी जल्दी सब हो जाएगा और सब टाइम पे हो जाएगा। तो वो वाला जो स्वमान है जिसमें बाबा सर पे हाथ रख के कहते हैं कि मैं तुम तुम्हारे तुम में हमेरी सारी शक्ति है और बाबा का वरदानी हाथ सर पे, तो उससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ है, बहुत ही ज्यादा।
चलिए बहुत सुंदर है, आप ऐसे ही लाभान्वित होते रहें और कार्यों को बहुत सरल करें, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जी। अगला प्रश्न कौन पूछ रहे?
मेरा नाम शरद है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और आपका जो समाधान कार्यक्रम है मैं 2 साल से देख रहा हूँ। तो मैं ड्रिंकिंग बहुत करता था लेकिन आपके समाधान कार्यक्रम की वजह से मेरी ड्रिंकिंग का जो प्रॉब्लम था वो 2 साल से कंटिन्यू समाप्त हो चुका है।
भाई तालियां बजाएं भाई इनके लिए, बहुत वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो इसके लिए मैं आपके समाधान कार्यक्रम के पूरी टीम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और अभी मेरा जो प्रश्न है, मैं कई सालों से बिजनेस करता हूं परंतु बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रहा हूं, तो उसकी वजह से जो पीछे घटा है और जो आगे के बारे में उसके बारे में बहुत सोचता रहता हूं, दोनों पीछे के बारे में और सामने के बारे में, तो उसमें जो मेरा मेमोरी पावर जो है वो कम हो गया है। और दूसरी बात, तो उसके वजह से घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ करने वाला ही नहीं हूँ क्योंकि प्रयास बार बार करता हूँ लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा हूँ। तो इसके बारे में आपके समाधान कार्यक्रम की वजह कार्यक्रम की ओर से मुझे क्या समाधान मिलेगा और इससे मुझे मुक्ति मिलेगी या फिर ऐसा ही चलता रहेगा?
बिल्कुल, चलिए शराब से तो मुक्ति मिल गई है आपको, राजा जी हमारे साथ है। राजा जी,
ऐसा बहुतों के साथ सुंदर अनुभव हो चुका है कि जो लोग कर्ज में डूबे थे और बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे थे, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस करने के बाद सहज ही समाधान हो गया। उनके अनुभवों के आधार से ही मैं आप सबको भी कहूंगा, ये बात आपकी नहीं बहुतों की है। देखिए, आप में शराब छोड़ने की विल पावर आ गई, आपको रियलाइज करना चाहिए कि मैं बहुत पावरफुल हूं और इसे एक्सेप्ट कर लो। और इसके लिए वही संकल्प जो स्पिरिचुअलिटी में हम देते हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। तो सवेरे उठते ही आप रोज कम से कम 21 टाइम चाहे लिखें चाहे याद करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होगा, वो दिनों दिन बढ़ता जाएगा। सवेरे उठते ही आपको कुछ संकल्प और करने हैं, पहले 10 मिनट में ये सब काम कर लेना है ताकि आपका माइंड फुल्ली चार्ज हो जाए और उससे निकलने वाले वाइब्रेशन आपके इस प्रोफेशन पर और आपकी समस्या पर पूरा प्रभाव डालने लगे। वो ये है कि सवेरे जैसे ही आप उठें, चाहे तो पहले ये लिख लें मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, या पहले ये संकल्प कर लें मैं बहुत भाग्यवान हूं क्योंकि इस जीवन में मुझे भगवान मिले, आंख खुलते ही उसको गुड मॉर्निंग करने का श्रेष्ठ भाग्य मिला, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं, और उसे हाथ ऊपर करके सच्चे मन से शुक्रिया देना कि हे शिव बाबा तुमने मुझे सब कुछ दिया है, बारंबार शुक्रिया, सच्चे मन से 2-3 बार, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, साथ में मैं बहुत धनवान हूं, मैं कर्ज मुक्त हूं, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब मेरा बिजनेस फर्स्ट क्लास चलेगा, अब मुझे कदम कदम पर सफलता मिलेगी। अगर आपके पास दुकान है तो आप देखना, विजन बनाना कि आज मेरी दुकान पर लगातार ग्राहक आ रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस आज चल रहा है। ये पहले 10 मिनट में आप कर लेना, लेकिन एक योग भट्टी आपको अवश्य करनी फॉर 21 डेज, और इसको हम नाम देते हैं विघ्न विनाशक भट्टी। 2 स्वमान पहले याद करेंगे 5 बार, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं और विघ्न विनाशक हूं, 5 बार याद करके 1 घंटा बहुत अच्छी तरह से योग अभ्यास करेंगे, सेम टाइम एवरी डे फॉर 21 डेज, ये 21 दिन की योग भट्टी होगी। और यदि आपका योग बहुत अच्छा होगा, एकाग्रता अच्छी होगी, तो जैसा बहुतों का अनुभव है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आप अच्छी कमाई करेंगे, कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और जीवन में श्रेष्ठ भाग्य का सूर्य उदय हो जाएगा।
लेकिन भ्राता जी, मैं जैसे योग में बैठता हूँ तो एकाग्रता नहीं हो पाती।
हाँ, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसके लिए जैसे मैंने कहा, सवेरे अगर आप चार्ज कर लेंगे और स्वमान लिखेंगे और फिर ईश्वरीय महावाक्य सुनने जाएंगे, उसके बाद आप चाहे कर लें, जैसे ही मुरली पूर्ण होती है 8 से 9 कर लें तो आप काफी फ्रेश रहेंगे। शुरू में यदि आपको कम कंसंट्रेशन भी हो तो आप उसे छोड़ना नहीं, और अच्छे अच्छे अभ्यास जो हम यहाँ रोज सिखाते हैं उनको करते हुए एकाग्रता भी अपनी बढ़ाना और कंटिन्यू करना इसको।
जैसे हम योग के लिए सवेरे 4 बजे मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जो अपने साथ बिजनेस में घटा है उसके बारे में ज्यादा विचार चलते हैं। तो क्या हम चलते फिरते योग कर सकते हैं?
चलते फिरते सारा दिन आप योग करेंगे तो सवेरे वो विचार नहीं आएंगे। और जो मैंने बताया ना, उठते ही पहले 10 मिनट में वो करना, तो उससे भी आपको बहुत बल मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।
एक चीज विशेष है, जैसे शरद के प्रश्न से ही रिलेटेड, मुझे लगता है पास्ट में जो चीजें हुई हैं बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं वो चीजें। और इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी कई लोगों से जब मेरी बात होती है तो मन नहीं लगता, जैसे इनका भी नहीं लग रहा है। कुछ एकदम सहज सी विधि हो सकती है या कितना समय लग सकता है?
देखिए, ये तो मनोवैज्ञानिक भी यही कहने लगे हैं, आजकल के व्यक्ति 70-80% पास्ट में रहने लगा है
जी।
उसके चिंतन में रहे या उसके इफेक्ट में रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य चिंतन नहीं कर रहा है लेकिन उसका एक सटल इफेक्ट ऊपर छा गया है जो उसे खुश नहीं रहने देता, एकाग्र नहीं रहने देता, सुंदर विचार नहीं करने देता है। तो इसकी सिंपल विधि ये कर लेनी चाहिए कि जैसे ही आंख खुले, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ 108 बार लिखे, सोने से पहले मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार लिखे, और चलते फिरते सारा दिन कुछ ना कुछ अच्छे अभ्यास, चाहे स्वमान के चाहे सोल कॉन्शियसनेस के, करते रहने चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे मन में छुपी हुई जो श्रेष्ठताएं हैं, जो देवत्व है, जो एक सुंदर फ्यूचर भी मनुष्य के सामने रहता है, वो जागृत होता जाएगा और पास्ट का इफेक्ट समाप्त होता जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब प्रैक्टिस सिंसियरली 6 मास अवश्य करनी
चाहिए। क्योंकि दत्त जी, कल ही मेरे पास एक प्रश्न आया था, उन्होंने कहा कि मैं 3 मास से ये कर रहा हूँ लेकिन अब मुझे करने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि वैसा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मेरा प्रश्न ये था कि कब तक ये किया जाए? आपने 6 मास कह दिया है, 6 मास में जरूर उन्हें ये रिजल्ट
मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया दत्त जी, और शरद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला प्रश्न कौन ले रहा है?
मेरा नाम एसएन ग्रोवर है, मेरे साथ मेरी वाइफ भी आई है, कमलेश ग्रोवर। तो सबसे पहले तो मैं समाधान प्रोग्राम को बहुत शुक्रिया देना चाहूंगा क्योंकि यहां से मुझे एक चीज की बहुत अच्छी प्राप्ति हुई है। भ्राता जी ने एक चीज बताई थी, जब भी कभी शारीरिक दिक्कत होती है तो 3 बार हाथ को ऐसे रगड़ के मैं आत्मा मास्टर सशक्तिवान हूं, और जहां भी पेन होता है, जहां भी दिक्कत होती है, तो वहां पर आप 1 मिनट के लिए रखें। तो जब भी मुझे दिक्कत होती है तो मैं ऐसा करता हूं और मेरी समस्या तुरंत 1 मिनट में खत्म हो जाती है।
क्या बात है, तालियां ग्रोवर जी के, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रोवर जी। आपकी दवाइयां तो छूट गई।
और जनरली परिवारों में मैंने देखा है कि एक समस्या आ रही है कि यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के थॉट्स, एक्टिविटीज और नेचर में बहुत ज्यादा बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, और कई बार तो कलह क्लेश तक भी पहुंच जाते हैं। उसके लिए आपसे कुछ सोल्यूशन की इच्छा रखते हैं।
बहुत अच्छा, ये करंट प्रॉब्लम है समाज की, क्योंकि पिछले 10 सालों में ही एक बड़ा परिवर्तन हमारे समाज में आ गया है। 10-15 साल में जब से इलेक्ट्रॉनिक्स का भारत में बहुत प्रचार हुआ और सबके हाथ में मोबाइल आ गए और फिर इंटरनेट आ गया, तो सारा संसार जुड़ गया। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अब, क्योंकि हमारी प्राचीन कल्चर को नहीं जानती, वो केवल वर्तमान को देख रहे हैं कि दूसरे लोग कैसा पहन रहे हैं, दूसरे युवक वो कैसे चल रहे हैं, वो बाइक किस तरह तेजी से काट रहे हैं, चला रहे हैं, वो ये देखते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये जमाना 50 साल पहले बहुत सुंदर था, या उससे और 50 साल पहले ये और सुंदर था। वो सोचते हैं हम सुंदरता की ओर बढ़ रहे हैं, विकास हमारा हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा गैप, जिसको जनरेशन गैप कहते हैं, ये दोनों के बीच आ गया है। अब स्पिरिचुअलिटी इसका समाधान देती है, क्योंकि गैप तो है, और आजकल के युवकों पर वर्तमान समय का भी बहुत बुरा प्रभाव है, जिसे हम कलयुग का प्रभाव कहते हैं, क्योंकि चारों निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा फैली हुई है, वो उनको आती रहती है और उससे वो उसी तरह का सीख कर फिर अपनी राह चलते हैं। तो माँ बाप कहते हैं ये करो, वो कहते हैं हमें तो ये करना है। माँ बाप कहते हैं ऐसे कपड़े पहनो, वो कहेंगे नहीं हमें तो ये पहनते हैं। हम अपने फ्रेंड सर्किल में अकेले अकेले हो जाते हैं, उन्होंने ऐसा पहना होता है हम ऐसा पहनेंगे, वो हमें किस दृष्टि से देखेंगे। विचारों का संपूर्ण रूप से परिवर्तन दोनों के बीच में आ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनके विचारों को बदलने से पहले जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने 50 साल या 40 साल का समय देखा है और समय को परिवर्तित होते हुए देखा है, अब उन्हें अपने में एक चेंज लानी पड़ेगी कि वो अपने बच्चों को हर जगह आदेश ही न दें, क्योंकि बच्चे हर जगह आदेश मानने को तैयार नहीं होंगे। आप दें उन्हें सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वमान इसे हम कहते हैं। चलो बड़े छोटों को सम्मान न भी दें, देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं, अगर बच्चे हाईली एजुकेटेड हो गए हैं, तो वो सम्मान के पात्र हैं। अगर वो बहुत बुद्धिमान हैं, तो बड़ों को उन्हें निश्चित रूप से सम्मान देना चाहिए। स्वमान की दृष्टि से उन्हें देखना चाहिए, जैसे हम जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है, जिनको ये पता है कि हमारा सुप्रीम टीचर स्वयं भगवान है, हमने ये पूरा जीवन देखा, 50 साल देखा कि उसने हमें कैसे पढ़ाया, उसने हमारी भावनाओं को कैसे चेंज किया। पहले हमें स्वमान दिया, उसने ये नहीं कहा तुम बहुत बुरे हो, तुम बड़े पापी हो, तुम बड़े गंदे हो, उसने कहा तुम महान आत्माएं हो, तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो, तुम में बहुत क्वालिटीज हैं। इससे हमारा स्वमान जग गया, और जब स्वमान जग गया तो उसकी बात सुनने के लिए हम तैयार हो गए। फिर उसने कहा क्रोध करना अच्छा नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया। और अगर वो ऐसे ही हमें कहते तुम बड़े खराब हो, बहुत क्रोध करते हो, घर में बड़ी अशांति करते हो, तो हम कहते करेंगे हम तो, तुम क्या करोगे हमारा, हम तो करेंगे। ये साइकोलॉजी हमें समझ लेनी चाहिए, ठीक राह पे लाना है। तो स्वयं भी बहुत अच्छा स्वमान का अभ्यास करें, उनके विचारों को भी सुने, उनके विचारों को फाइनली कैंसिल न कर दें, सुने, उसमें आप कुछ करेक्शन दे सकते हैं, और वो करेक्शन भी बहुत अच्छी भावनाओं से, ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि आप उनकी बातों को रिजेक्ट कर रहे हैं। उनकी बातों को सम्मान देते हुए उन्हें अच्छी बात सिखाएंगे, तो जनरेशन गैप होते हुए भी, विचारों का बहुत बड़ा डिफरेंस होते हुए भी, वो आपको सम्मान देंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर वो गलत राह पे जा रहे हैं, तो उन्हें रियलाइज होगा दे आर रॉन्ग।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर संकल्प मुश्किलें आसान, पत्नी संकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।